एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ले कार्रे के उस जबरदस्त नॉवेल की जिसने जासूसी कहानियों के मायने ही बदल दिए। नाम है द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड। ये 1963 में आई थी, मतलब शीत युद्ध का वो दौर जब बर्लिन की दीवार दुनिया को सच में दो हिस्सों में बांटती थी।
बिल्कुल, और इस कहानी को लिखने वाले थे जॉन ले कार्रे, जिनका असली नाम था डेविड कॉर्नवेल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कोई बाहर से देखकर लिखने वाले लेखक नहीं थे। वो खुद ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 और MI6 का हिस्सा रह चुके थे।
अच्छा, तो उन्हें अंदर की बातें पता थी।
हाँ, इसीलिए उनकी कहानियों में वो जेम्स बॉन्ड वाली चमक दमक, गैजेट्स, वो सब नहीं मिलता। यहाँ जासूसी एक थका देने वाला, बहुत ही मतलब नौकरशाही से भरा और नैतिक रूप से खोखला कर देने वाला काम है।
और इसी खोखलेपन का मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रतीक है इस कहानी का नायक एलेक लीमस। वो कोई हीरो नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी की शुरुआत ही एक हार से होती है।
कहाँ पर?
बर्लिन की दीवार पर।
लीमस अपने आखिरी एजेंट को पूर्वी बर्लिन से पश्चिम लाने की कोशिश कर रहा है। माहौल में जबरदस्त तनाव है और आखिरी पल में उसका एजेंट मारा जाता है।
ओहो।
और ये सिर्फ एक मिशन की नाकामी नहीं थी, ये लीमस के करियर की, उसकी आत्मा की हार थी। इसके बाद उसे लंदन मुख्यालय वापस बुला लिया जाता है,
जिसे मजाक में सर्कस कहते हैं।
हाँ, द सर्कस। तो एक तरह से उसे ठंड से वापस बुला लिया गया, मतलब फील्ड से हटा दिया गया।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर्कस के पास उसके लिए कुछ और ही था।
यहीं से वो शतरंज की बिसात बिछती है जो इस नॉवल की जान है। सर्कस का जो प्रमुख है कंट्रोल, वो लीमस को एक आखिरी मिशन देना चाहता है।
और मिशन क्या था? बदला इरिना, पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी के चीफ हांस डाइटर मुंट से। मुंट ने ही लीमस के सारे जासूसों को एक एक करके खत्म किया था।
लेकिन ये कोई सीधा हमला तो हो नहीं सकता था? ले कार्रे के दुनिया में चीजें कभी सीधी होती ही नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। योजना बहुत बहुत ही कपट से भरी थी। लीमस को एक टूटा हुआ बदनाम शराबी और नौकरी से निकाला गया जासूस बनने का नाटक करना था।
अच्छा, ताकि दुश्मन उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे।
बिल्कुल, उसे खुद को एक गद्दार के रूप में पेश करना था और ऐसे झूठे सबूत देने थे जिससे उन्हें लगे कि उनका अपना चीफ मुंड ब्रिटिश लोगों के लिए काम कर रहा है।
मतलब मकसद था कि मुंड को उसी के लोग खत्म कर दें।
हाँ, अपने ही एक बेहतरीन जासूस की इज्जत को दांव पर लगाकर दुश्मन के घर में आग लगाना,
ये तो अपने आप में ही एक नैतिक रूप से बहुत धुंधला रास्ता है।
और इसी धुंधले रास्ते पर चलते हुए लीमस की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो इस बेरहम खेल का हिस्सा नहीं है।
लिज गोल्ड।
हाँ, लिज गोल्ड। अपनी झूठी पहचान को सच दिखाने के लिए लीमस एक लाइब्रेरी में नौकरी करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात लिज से होती है। वो एक युवा आदर्शवादी लड़की है, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है। इसलिए नहीं कि उसे कोई क्रांति लानी है, बल्कि इसलिए कि उसे सामाजिक न्याय में यकीन है।
और ली कार्रे ने इस धोखेबाजी की दुनिया के बीच में एक ऐसी लड़की को रखा है जो अभी भी आदर्शों में मानती है।
हाँ, और वो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, वो इस कहानी की नैतिक आत्मा है। वो उस इंसानियत का प्रतीक है जिसे लीमस जैसे जासूस पीछे छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
तो लीमस उसकी तरफ खींचता है।
हाँ, और लिज वो लीमस के टूटे हुए व्यक्तित्व में एक दुखी इंसान को देखती है और उससे प्यार करने लगती है। तो जो चीज एक नाटक होनी चाहिए थी, वो हकीकत बन जाती है।
और जासूसी की इस सर्द दुनिया में इंसानियत और प्यार, ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है।
बिल्कुल, यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। खैर, लीमस का नाटक काम कर जाता है। उसे पूर्वी जर्मनी के एजेंट उठा ले जाते हैं।
और वहाँ उसका सामना किससे होता है?
वहाँ उसका सामना होता है मुंट के डिप्यूटी फीडलर से। और फीडलर मुंट से बिल्कुल अलग है। वो एक बुद्धिजीवी है, एक सच्चा कम्युनिस्ट, और वो मुंट के नाजी अतीत पर शक करता है।
तो यहाँ हितों का टकराव साफ है। फीडलर को अपने बॉस पर पहले से ही शक है।
सही कहा। और लीमस उसे वही कहानी सुनाता है जो वो सुनना चाहता है। वो बड़ी चालाकी से फीडलर को वो सबूत देता है जो सर्कस ने तैयार किए थे।
जैसे?
जैसे स्विस बैंक में कुछ गुप्त भुगतान की रसीदें, कुछ अधूरी जानकारियां, ये सब सीधे मुंट की तरफ इशारा करती थीं। फीडलर को यकीन हो जाता है कि उसका बॉस ही गद्दार है और वो मुंट को गिरफ्तार कर लेता है।
तो लीमस का मिशन कामयाब हो गया, कहानी अपने चरम पर पहुंच गई।
हाँ, मुंट पर मुकदमा चलाने के लिए एक गुप्त अदालत बैठती है। फीडलर अपना केस बहुत मजबूती से रखता है। ऐसा लगता है कि बस मुंट का खेल अब खत्म।
लेकिन
तभी कहानी का रुख पूरी तरह पलट जाता है। मुंट का वकील बचाव के लिए एक ऐसी गवाह को बुलाता है जिसके वहां होने की किसी को उम्मीद नहीं थी।
लिज गोल्ड।
हाँ,
लिज गोल्ड।
पर वो वहां पहुंची कैसे?
उसे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने पूर्वी जर्मनी बुलाया गया था, और अदालत में वो एक ईमानदार लड़की है, वो सच बोल देती है
और अनजाने में सब कुछ बिगाड़ देती है।
हाँ, वो बता देती है कि सर्कस के एक आदमी ने उसका कर्ज चुकाया था। वो बता देती है कि लिमेस ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सुरक्षित रहेगी।
और बस यही छोटी छोटी बातें
पूरी कहानी पलट देती हैं। अदालत समझ जाती है कि लिमेस एक भेजा हुआ ब्रिटिश एजेंट है जिसका मकसद मुंट को फंसाना था। फीडलर का पूरा केस ढह जाता है।
लेकिन कहानी का सबसे भयानक सच तो अभी बाकी था।
हाँ, वो सच जिसने इस नॉवल को अमर बना दिया।
और वो क्या था?
सच ये था कि मुंट खुद एक ब्रिटिश डबल एजेंट था।
क्या?
हाँ, सबसे ऊंचे स्तर का। ये पूरा ऑपरेशन मुंट को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए रचा गया था।
तो फिर असली निशाना कौन था?
असली निशाना था फीडलर। वो बहुत होशियार था और मुंट के राज के बहुत करीब पहुंच गया था।
मतलब लिमेस का इस्तेमाल सिर्फ एक मोहरे की तरह किया गया?
बिल्कुल, ताकि फीडलर को एक झूठे षड्यंत्र में फंसाकर रास्ते से हटाया जा सके।
ये तो जबरदस्त विश्वासघात है अपने ही आदमी के साथ।
यही इस दुनिया की हकीकत है, बड़े मकसद के लिए छोटे लोगों की कुर्बानी।
तो फीडलर का क्या हुआ?
उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और शायद मार दिया जाता है, और मुंट अब पूरी तरह से सुरक्षित लिमेस और लिस को बर्लिन की दीवार से भगाने का इंतजाम करता है।
और यही कहानी अपने सबसे दुखद अंत पर पहुंचती है। वो आखिरी सीन, वो इतना यादगार क्यों है?
क्योंकि उस सीन में इस नॉवेल का पूरा सार छिपा है। दीवार पर चढ़ते हुए लिमेस आखिरकार लिज को पूरी सच्चाई बताता है
कि वो सब सिर्फ मोहरे थे।
हाँ, कि हम सब, मैं, तुम, फिडलर, सिर्फ बड़े लोगों की बड़ी योजनाओं के छोटे छोटे मोहरे थे। जैसे ही लिमेस दीवार के ऊपर पहुंचता है और लिज को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है, तेज रोशनी जलती है और गोलियां चलती हैं।
और लिज?
लिज को मंट के ही गार्ड गोली मार देते हैं।
लेकिन क्यों? मंट ने तो उन्हें भागने का मौका दिया था।
शायद क्योंकि लिज अब एक ऐसी गवाह थी जो बहुत कुछ जानती थी, या शायद ये भी योजना का हिस्सा था। पश्चिम की तरफ से लिमेस के साथी उसे आवाज देते हैं, कूदो, जल्दी करो, वो सुरक्षित जोन में है। लेकिन लिमेस नीचे लिज के बेजान शरीर को देखता है और फिर उस दुनिया की तरफ देखता है जिसने ये सब किया, उसकी अपनी दुनिया, और वो एक फैसला लेता है।
क्या?
वो जानबूझकर वापस पूर्वी बर्लिन की तरफ दीवार से नीचे उतरता है और गोलियों का सामना करता है। वो लिज के पास ही मर जाता है।
आखिरकार वो ठंड से सही मायनों में अंदर आ गया था।
हाँ, जासूसी की उस बेरहम दुनिया से बाहर निकलने का शायद यही एकमात्र रास्ता था।
ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। यहाँ कोई हीरो या विलन नहीं है। सर्कस के तरीके भी उतने ही क्रूर हैं जितने उनके दुश्मनों के।
सही कहा। तो फिर लड़ाई किस बात की है? यही ले कार्य का सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक अमानवीय विचारधारा से लड़ने के लिए आपको भी अमानवीय बनना पड़ता है?
और अगर आप वैसे ही बन जाते हैं जिससे आप लड़ रहे हैं, तो क्या उस जीत का कोई मतलब रह जाता है?
बिल्कुल, और इसमें हमेशा व्यक्ति की हार होती है। लिमेस, लिज, फीडलर, ये सब बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़ी बड़ी विचारधाराओं के खेल में कुचल दिए गए।
उन्होंने अपनी इंसानियत की कीमत चुकाई।
हाँ, लिमेस का प्यार, जो उसे एक पल के लिए इंसान बनाता है, वही उसके और लिज के विनाश का कारण बन जाता है। इस सर्द दुनिया में गर्म भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है।
तो ये उपन्यास एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक बड़े मकसद के लिए अपनी ही इंसानियत को दांव पे लगाना सही है?
और ये हमें याद दिलाता है कि सत्ता के बड़े खेलों में असली कीमत हमेशा साधारण लोगों को अपने प्यार, विश्वास और आदर्शों से चुकानी पड़ती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।